समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार श्रोताओं, स्वागत आप सभी का कार्यक्रम आज सवेरे में। और सुबह के 7:30 हो रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम में लेकर के हम आए आपके लिए बहुत सी रोचक जानकारी और बहुत से समाचार। मैं हूं निखिल कुमार, मेरे साथ में है सायरा मुश्तबा। नमस्कार सायरा।
नमस्कार निखिल, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल एंड लिसनर्स हू हैव जॉइंड अस इन दिस वीकेंड एडिशन ऑफ आज सवेरे, वेर वी ब्रिंग यू यू कैन से अमेलगमेशन ऑफ न्यूज मेट्रो सिटी अपडेट्स, ताकि आपको पता चले आपके अपने शहर का हाल। अपार्ट फ्रॉम दैट वील ऑल्सो लुक एट द इम्पोर्टेंट इवेंट्स दैट टुक प्लेस ऑन दिस डे एंड द पर्सनैलिटीज हू ईदर हैव द बर्थ और डेथ एनिवर्सरीज, ऑल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर रफली। बट सबसे पहले शुरुआत करते हैं खबरों से, और जाहिर सी बात है निखिल दैट सिंस यू नो वोटिंग हैज ऑलरेडी बिगन और फर्स्ट फेज तो खत्म भी हो चुका है, सो यस एब्सोल्युटली, तो जाहिर सी बात है ज्यादातर हमारी खबरें जो है उसी से रिलेटेड है। द वोटर टर्नआउट ऑफ 60.96% वॉज रिकॉर्डेड इन द सेकेंड फेज ऑफ लोकसभा इलेक्शन टिल 7 PM येस्टरडे। इन दिस फेज 88 लोकसभा सीट्स वेंट टू पोल्स। Voters across 13 states and union territories participated enthusiastically to cast their vote at their polling station. Voting took place on 20 seats of Kerala, 14 of Karnataka, 13 of Rajasthan, 8 each of Uttar Pradesh and Maharashtra, 6 seats of Madhya Pradesh, 5 seats each in Assam and Bihar, 3 each of West Bengal and Chhattisgarh, and 1 seat each in Manipur, Tripura and Jammu and Kashmir. Polling for the Betul parliamentary constituency of Madhya Pradesh, which was scheduled in the second phase, will now be held in the third phase due to the demise of the BSP candidate. Voting for Lok Sabha elections has now been completed in the states of Kerala, Rajasthan, Tripura, Tamil Nadu, Sikkim, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Mizoram, Arunachal Pradesh, Uttarakhand, Puducherry, Lakshadweep and Andaman and Nicobar Islands. In Gujarat, political campaigning has picked up momentum. Senior BJP leader and Union Home Minister Amit Shah and Congress leader Priyanka Gandhi Vadra will campaign in favour of their party's candidates today. The entire state will go to polls on the 7th of May. Senior BJP leader Amit Shah will address 3 marathon rallies in favour of BJP candidates at Porbandar, Bharuch and Panchmahal today. In the evening, Mr. Shah will hold a roadshow in Vadodara. On the other hand, Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra will also campaign for the first time in South Gujarat. She will address the election rally at Dharmapur in Valsad district today. From Congress, Senior Congress Leader Mukund Vasney and State Congress Leader Shakti Singh Goel will also participate in campaigning today.
लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार तेज हो चुका है। इस चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। तीसरे दौर में कुल 1,351 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कर्नाटक के बीदर में कल एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भारत को विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने देश में कई बदलाव किए हैं और पिछले एक दशक में वे नई विकास योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। श्री नड्डा ने कहा कि जहां यूरोप, जापान और रूस जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं, वहीं भारत लगातार आगे बढ़ रहा है।
In Jammu and Kashmir, the second phase of voting for the 18th Lok Sabha elections concluded peacefully in Jammu parliamentary constituency on Friday. Akashvani Jammu correspondent reports that despite scorching hot weather, enthusiastic voters from Jammu, Samba, Riasi and Rajouri came out in record numbers to cast their ballots. Long queues formed at polling stations as people eagerly waited for their turn, with the youth and first-time voters excitedly participating in this festival of democracy. The district of Jammu, along with Samba, Riasi and a part of Rajouri district, witnessed a remarkable voter turnout of 71.91%. This high participation reflects voters' unwavering commitment and deep faith in the democratic system, contributing to a flourishing society.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज असम में पार्टी के बारपेटा लोकसभा उम्मीदवार के लिए चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। अपनी यात्रा संपन्न करने से पहले वे गुवाहाटी में मीडियाकर्मियों से भी बातचीत करेंगे। असम के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा भी आज रैली को संबोधित करेंगे। असम में तीसरे चरण में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है।
Filing of nominations for the fifth phase of Lok Sabha elections began yesterday with the issuance of notification. 49 Lok Sabha seats in 6 states and 2 union territories will be covered in this phase. 14 seats of Uttar Pradesh, 13 of Maharashtra, 7 of West Bengal, 5 each of Odisha and Bihar, 3 seats of Jharkhand and 1 seat each in Jammu and Kashmir and Ladakh will go to polls in this fifth phase. Meanwhile, scrutiny of nominations for the fourth phase was taken up yesterday. Monday will be the last day for withdrawal of nominations.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यात्रा के लिए लगभग 16 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है। श्री धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यात्रा के लिए सड़कें, परिवहन व्यवस्था, पार्किंग, होटल, ढाबे, रेस्तरां और पुलिस यातायात व्यवस्था सहित सभी पर विचार कर इनमें अपेक्षित सुधार किया गया है।
Indian Air Force, IAF and Ministry of Electronics and Information Technology or MeitY yesterday signed an MOU to leverage DigiLocker secure and accessible document repository services at Vayu Bhavan in New Delhi. With this MOU, IAF embarked on a transformative digital journey by integrating with the DigiLocker platform. This is a flagship initiative under the Digital India program.
मौसम विभाग ने गांगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और अन्य स्थानों पर भीषण गर्मी के कारण रेड अलर्ट जारी किया है। ओडिशा में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, जहां राज्य में लगभग हर क्षेत्र में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान दर्ज हुआ है। राज्य के अंगुल, बोलेनगर, बोध और नुआपाड़ा में तापमान 44 डिग्री से अधिक पहुंच गया, जिससे ये सबसे गर्म स्थान रहे। वहीं पश्चिमी ओडिशा के अधिकतर शहरों में तापमान 43 डिग्री या उससे अधिक दर्ज हुआ है।
In the Union Territory of Jammu and Kashmir, 2 terrorists were killed in an encounter with security forces in Naupura area of Sopore in North Kashmir's Baramulla district yesterday. The identity of the slain terrorist is being ascertained. Arms and ammunition, including incriminating materials, were recovered from their possession. The encounter broke out on Thursday after a joint team of police, army and CRPF launched a cordon and search operation in Naupura.
आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मुकाबला दोपहर 3:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा, जबकि दूसरा मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल रात पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। 262 रन के विशाल लक्ष्य को पंजाब की टीम ने जॉनी बेयरस्टो के नाबाद शतक के दम पर 8 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। तो ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। और श्रोताओं, अब समय है प्रमुख महानगरों यानी चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद और फिर दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की खबरों को जानने का। तो सायरा, कहां से शुरुआत कर रहे हैं?
लेट्स स्टार्ट फ्रॉम शहरी चेन्नई। निखिल
जी,
द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी हैज डायरेक्टेड ऑफिशियल्स टू मॉनिटर यूज ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इन फूड आइटम्स एंड टेक एक्शन अगेंस्ट दोज वायलेटिंग द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। According to a circular, the commissioner asked designated officers to take action against any food business operator who is using liquid nitrogen for direct consumption in food items such as biscuits, ice creams, wafer biscuits, among others. The circular also reads that the liquid nitrogen should fully evaporate from the food or drinks before they are served. Private residential cruise MS The World, Bahamas flag cruise vessel, arrived at Chennai port on 24th of April with 280 crew members and 89 passengers. The vessel's last port of call was Trincomalee, Sri Lanka, and it is set to sail to Visakhapatnam on 26th of April. The speciality of MS The World, unlike other cruise vessels flying around the world, is that it is a private residential cruise ship operated like a condominium complex with large apartments that can be purchased. While some residents choose to live on board full-time, others stay periodically. Tour operators have organized individual tour itineraries for passengers to go sightseeing in and around the city of Chennai. Moving to Bengaluru, an interior hamlet in Dakshin Kannada district recorded 100% voting in the Lok Sabha election yesterday. This hamlet has 111 voters only, and each one of them turned up at the only polling booth, completing voting 2 hours before polling ended at 6 p.m. The hamlet is inhabited by forest dwellers, mainly tribal farmers and collectors of minor forest waste. Despite having no power or transport connectivity, the people survive in the forest using water from the perennial water sources in the hills of the Western Ghats. To reach their taluk headquarters, the people have to travel via Mudigere by bus or walk 8 kilometers through dense forests, but they all made sure to vote. In 2023 Karnataka Assembly elections, Banjaru Male had recorded 99% voting according to the district polling statistics. So, Nikhil, you can see that the government and the election commission is having a lot of campaigns, awareness campaigns for inspiring and motivating people to vote. Hmm. But this is such an inspiring story. Jo polling booth hai, imagine that's 8 kilometers away. So, aapko ya to pedal chalna padega 8 kilometer tak, ya phir aap bus lijiye, aur wo bhi through forest and all. So, I think that's very inspiring, isn't it?
Bilkul.
Moving on to Hyderabad. The Election Commission of India has strongly censured Congress star campaigner and Telangana minister Konda Surekha for making unverified allegations against Bharat Raj Samiti BRS and its working president K.T. Rama Rao. The ECI in its order said it had received a complaint from BRS spokesperson Karne Prabhakar on 6th of April, alleging that Surekha had made unverified and unsubstantiated allegations against the party and Mr. Rao at a press conference on 1st of April. The EC then sought the Telangana Chief's Electoral Officer for a report, which it received on 16th of April. The Commission also warned the leader to remain careful in her public utterances during the period of Model Code of Conduct. So, Nikhil, this was the buzz that I had from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. What is the latest you have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
जी हाँ, दिल्ली में भी राजनीतिक सरगर्मियों की हम बात करेंगे तो राजधानी दिल्ली में अगले महीने होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। इस कड़ी में कल पूर्वी दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा ने पांडवनगर और मंडावली में जनसंपर्क यात्रा के माध्यम से जनता को संबोधित किया। नई दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी मासूरी स्वराज ने एसडीए मार्केट से यूसुफ सराय मार्केट तक जनसंपर्क यात्रा निकाली और लोगों से वोट देने की अपील की। वहीं पूर्वोत्तर दिल्ली से भाजपा के उम्मीदवार मनोज तिवारी ने दिलशाद गार्डन और वेलकम सहित अन्य क्षेत्रों में लोगों से चुनाव पर विचार विमर्श किया। उधर दक्षिणी दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह मिथोड़े ने पालम, छतरपुर और महरोली में जनसभाओं को संबोधित किया। कांग्रेस भी चुनावी प्रचार में जोर शोर से लगी हुई है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी उदित राज ने कल मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में जनता को संबोधित किया और चुनाव में समर्थन मांगा। वहीं चांदनी चौक से कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल ने मुल्तान नगर और पश्चिम बिहार में सभाएं आयोजित की। विपक्षी गठबंधन की ओर से पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी कुलदीप कुमार ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के साथ प्रेस वार्ता आयोजित की। इसके अलावा उन्होंने गांधीनगर और शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में जनता को संबोधित किया। दिल्ली नगर निगम एमसीडी के अंतर्गत महापौर और उपमहापौर पदों के लिए कल होने वाले चुनाव को स्थगित कर दिया गया। नगर निगम सचिव ने कल शाम एक विज्ञप्ति जारी कर इसकी सूचना दी और कहा कि चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण चुनाव फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगी। राजधानी में कल एक प्रेसवार्ता में पार्टी नेता आतिशी ने कहा कि सुनीता केजरीवाल कल पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में रोड शो करेंगी। भारतीय वायुसेना ने कल राजधानी के राष्ट्रीय समर स्मारक परिसर में वायुसेना अलंकरण समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने 51 भारतीय वायुसेना के योद्वाओं को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया। इन पुरस्कारों में 3 युद्ध सेवा पदक, 7 वायुसेना पदक वीरता, 13 वायुसेना पदक और 28 विशिष्ट सेवा पदक शामिल हैं। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने प्रत्येक पुरस्कार विजेता को उनके वीरतापूर्ण कार्यों और भारतीय वायुसेना की सच्ची परंपराओं में विशिष्ट सेवा के लिए बधाई दी। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक दंपत्ति को राजधानी के तिलक नगर में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से लगभग 800 ग्राम हेरोइन और 20 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। इन दोनों के खिलाफ 30 से अधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस को काफी समय से इनकी तलाश थी। और अब चलते हैं मुंबई। 2024 के लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए नामांकन मुंबई उपनगरीय जिले के 4 निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करते हुए कल शुरू हुआ। मुंबई उत्तर पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार मिहिर कोटेचा और निर्दलीय सूक्ष्म मौर्य ने अपना नामांकन जमा किया। रिटर्निंग ऑफिसर के अनुसार मुंबई के शेष 3 निर्वाचन क्षेत्रों मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई दक्षिण और मुंबई उत्तर पश्चिम के लिए कोई नामांकन अभी तक दाखिल नहीं किया गया है। पांचवें चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 3 मई है और पर्चों की जांच 4 मई को होगी। उम्मीदवारों के पास 6 मई तक अपना नाम वापस लेने का विकल्प होगा। इस बीच मुंबई पुलिस ने 14 अप्रैल को अभिनेता सलमान खान के आवास के बाहर हुई गोलीबारी के मामले में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई के खिलाफ कल लुकआउट सर्कुलर जारी किया। इस मामले में अनमोल और लॉरेंस को वांछित आरोपी के रूप में नामित किया गया है, जिसमें पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। हमले के कुछ दिन बाद मुंबई अपराध शाखा द्वारा गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों के अलावा पुलिस ने पंजाब से भी 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिनकी पहचान सोनू कुमार बिश्नोई और अनुज कुमार थापन के रूप में हुई थी, जिन्होंने सलमान खान के आवास के बाहर गोलीबारी में इस्तेमाल किए गए हथियार उपलब्ध कराए थे। और अब खबर कोलकाता से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट निर्वाचन क्षेत्रों में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मतदान प्रक्रिया समाप्त होने से पहले पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि हिंसा की कोई घटना नहीं हुई। दूसरे चरण में राज्य बलों के साथ सीएपीएफ की कुल 272 कंपनियां तैनात की गई थी। तो ये थी महानगरों से जुड़ी हुई खबरें। और अब समय हो चला है मौसम पर नजर डालने का। तो दिल्ली में आज आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने के आसार हैं। अधिकतम तापमान आज 39 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर मुंबई में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। बात करें कोलकाता की तो वहां गर्मी की लहर रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, के अधिकतम तापमान आज 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है। सायरा, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में आज मौसम कैसा रहने वाला है? हालांकि मौसम चुनाव की वजह से काफी गर्म है।
यस, बट इफ यू सी इफ यू लुक एट चेन्नई एंड हैदराबाद, बोथ द सिटीज विल हैव अ क्लाउडी स्काई टुडे, व्हाइल बेंगलुरु विल हैव अ मेली क्लियर स्काई टुडे। इफ यू टॉक अबाउट टेम्परेचर्स इन चेन्नई, दे विल हॉवर बिटवीन 27 एंड 35 डिग्री सेल्सियस, व्हाइल इन बेंगलुरु दे विल हॉवर बिटवीन 23 एंड 37 डिग्री Celsius. Hyderabad will have slightly higher temperatures. Minimum was 26, while maximum will be 41 degrees Celsius.
और अब समय हो चला है इतिहास के पन्नों में झांक कर देखने का। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि आज 27 अप्रैल है और आज के दिन वर्ष 1662 में नीदरलैंड्स और फ्रांस ने सैन्य संधि पर हस्ताक्षर किए थे।
एंड निखिल, आपको याद होगा एक वो दौर था जब हम कहते थे उनका तार आया है, इज़न्ट इट? तो वो दौर खत्म हो गया, बट इट वॉज ऑन दिस डे इन 1854 द फर्स्ट टेलीग्राम वॉज सेंट बिटवीन मुंबई एंड पुणे।
और आपको बता दें श्रोताओं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय ने महिलाओं को विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में पात्रता के लिए पहली बार मंजूरी आज के दिन वर्ष 1848 में दी थी।
On this day in 1918, Gandhiji attended Viceroy's War Conference at Delhi and addressed it in Hindustani, subsequently touring Kaira district to raise recruits for the army.
वर्ष 1945 में आज दूसरे विश्व युद्ध में नाजी नेता हिटलर की सेनाओं के खिलाफ अमरीका, ब्रिटेन और सोवियत संघ की सेनाओं ने मोर्चा खोला था। वहीं जर्मनी में एल्बे नदी के किनारे अमरीका और सोवियत संघ की सेनाओं के बीच पहली भेंट हुई थी।
On this day, 1942, Gandhiji condemned stationing of US troops in India. And also on this day in 1993, a national credit fund for women called the Rashtriya Mahila Kosh was set up.
वर्ष 1960 में आज का ही वो दिन था जब नई दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज की शुरुआत की गई थी। और वर्ष 1961 में आज के दिन सियरा लियोन की आजादी का दिन रहा था। यह पश्चिम अफ्रीकी देश तकरीबन 150 साल तक ब्रिटेन के अधीन रहा था और आधी रात को हरी, सफेद और नीली पट्टियों वाले देश का ध्वज फहराया गया था।
And on this day in 1994, the Supreme Court struck down Section 309 of the Indian Penal Code, which made suicide a punishable offence, violative of Article 21.
वर्ष 1967 में आज के दिन अमरीका ने नेवादा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया था। और वर्ष 1972 में अंतरिक्षयान अपोलो 16 पृथ्वी पर वापस लौटा था आज के दिन। और 2005 में आज का ही वो दिन था जब टूलिज फ्रांस में एयर फ्रांस में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े विमान A380 ने पहली बार परीक्षण उड़ान भरी थी। और शायर, अब समय हो चला है जानी मानी हस्तियों को याद करने का। तो कई ऐसी महत्वपूर्ण हस्तियां जिन्होंने आज के दिन जन्म लिया और जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी भी है। सबसे पहले हम इस कड़ी में याद करेंगे फिरोज खान साहब को, जो अपने समय के एक जाने माने अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक और अपनी खास शैली, अलग अंदाज और किरदारों के लिए जाने जाते हैं। एक चॉकलेटी सा चेहरा हमारी आंखों के सामने आ जाता जब भी फिरोज खान की हम बात करते हैं।
यस, हिज रियल नेम वाज़ ज़ुल्फ़िकार अली शाह खान, बट ऑफ कोर्स वी नो him as Feroz Khan. And not just a very good actor, but also editor, producer and director, best known for his work in Hindi cinema. In fact, kaha jata hai, he was a very flamboyant and extravagant, keh sakte unko ek kehte nahi Ali Shan zindagi jeena bahut pasand tha. So that's why if you see, he rarely portrayed poor roles, you can say poor characters on screen. Hamesha wo Ameer Zade hi bante the. And especially it is said that in the films that he produced and directed, wo ghodon ka bahut shaukeen the. He had a huge farmhouse, so he used to have his own horses for the film shows, and his cars, they were his personal cars, badi achhi si Mercedes and everything they were showed. He's driving a swanky car, so they all belong to him.
Aur sabse khas baat to Saira ye thi ki ek sundar hero ke alawa jab wo kabhi khunkhar villain bante the tab bhi log unko bahut pasand karte the, kyunki unhone apne andaaz ko is tarah se rakha hua tha ki 70 ke dashak mein log unse prabhavit hote the. Halanki wo khud Hollywood ke अभिनेता क्लिंट ईस्टवुड से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उनकी शैली में काम करना भी चाहते थे. और श्रोताओं को बता दें कि वर्ष 1960 में फिल्म दीदी से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी.
Yes, and later on he appeared in many successful films like Arzu, Aurat, Safar, Mela, Apraad, Khote Sikke, Kala Sona, Dharmatma, Nagin, Qurbani, Jabaz, and very recent, of course, 2007, which was one of his, I think, last films was Welcome. And he won the Filmfare Award for Best Supporting Actor for Aadmi aur Insaan in 1970. And was also honored with the Filmfare Lifetime Achievement Award in 2000. And jaise aapne kaha, he was inspired by Clint Eastwood. He was in fact called the Clint Eastwood of the East.
Aaye sunte hain un par filmaye gaye ye gana.
Surat tumhari,
kya chahte ho?
Chahat tumhari,
na hum jo keh de,
keh na sakogi.
Lagti
और श्रोता आपको बता दें कि उन्होंने आदमी और इंसान, मेला और धर्मात्मा जैसी बहुत सारी शानदार फिल्में दी थी. और कुर्बानी जो 1980 में आई थी वो उनकी करियर की सबसे अधिक सफल फिल्म रही थी और इसमें उनके साथ विनोद खन्ना साहब भी थे जिन्हें अभी हम याद करेंगे. और इस फिल्म में फिरोज और जीना तमान की जो जोड़ी थी उसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था. और वेलकम फिल्म में उनका जो डायलॉग था, अभी हम जिंदा हैं उदय, बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया लोगों के बीच में.
यस, इनफैक्ट उनकी जो फिल्म जांबाज भी थी, तो आई रिमेम्बर एज अ चाइल्ड आई वाज रियली फैसिनेटेड बाय दिस सॉन्ग इन विच श्रीदेवी इज क्लैड इन अ रेड सारी होल्डिंग अ माइक वेरी सिडक्टिवली. सो लेट्स लिसन टू दैट सॉन्ग.
हर किसी को नहीं मिलता यह प्यार जिंदगी में, खुश नसीब है वो जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में. हर किसी को नहीं मिलता यह प्यार जिंदगी में, प्यार जिंदगी में.
और श्रोताओं को बता दें कि आज पुण्यतिथि है मनोज दास की. वे प्रसिद्ध उड़िया साहित्यकार थे. उनकी अधिकांश रचनाएं उड़िया भाषा और अंग्रेजी में हैं. उन्हें उनकी साहित्यिक सेवा के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था और 2001 में उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था. और आपको बता दें कि मनोज दास ने अंग्रेजी में लिखते हुए भी साहित्य सृजन का मूल स्रोत अपनी उड़िया भाषा में ही रखा था. और इस परंपरा का विकास देखने को मिलता है आगे चलकर के उनकी रचनाओं में, जो संस्कृत और उड़िया की लोक कथाओं के रूप में हमारे सामने आई. आपको बता दें कि वर्ष 1947 में मनोज दास की पहली कहानी समुद्र क्षुदा प्रकाशित हुई थी. हालांकि शुरू के दिनों में उन्होंने कविता, भ्रमण कहानी और रम्य रचनाएं लिखी थी, पर उनकी साहित्य साधना की प्रधान विधा है कहानी, और कहानीकार के रूप में ही उन्होंने अपनी पहचान बनाई. और 1971 में प्रकाशित मनोज दासक कथा और कहानी में उनकी तब तक लिखी गई कहानियां जो सर्वाधिक प्रकाशित हुई थी और बिक्री के लिए भी बहुत ज्यादा पसंद की गई थी. उसके बाद भी उनके कई संग्रह प्रकाशित हुए थे.
Today we are also remembering Jamshedji Framji Madan, professionally known as JFN Madan, a theatre and film magnate who was one of the pioneers of film production in India. He was an early exhibitor, distributor and producer of films and plays. In fact, he accumulated his wealth on the Parsi theatre district scene in Bombay in the 1890s, where he owned two theatre companies. He moved to Calcutta in 1902, where he founded the Elphinstone Bioscope Company and began producing and exhibiting silent movies. He expanded his empire considerably after acquiring rights to Pathfinder Films. He produced Satyavadi Raja Harishchandra in 1917 and Bilwa Mangal in 1919. In fact, very few people know that he was the owner of the Electric Theatre, which was known as Regal, later the Grand Opera House, later known as Globe Cinema, and also Crown Cinema, later known as Uttar Cinema. They were all owned by Madan Theatres. So today we remember him on his birth anniversary.
और श्रोताओं, आज ही पुण्यतिथि है विनोद खन्ना की। वे हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता थे और विनोद खन्ना अपने वक्त के सबसे आकर्षक अभिनेताओं में से गिने जाते थे। उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया था। हालांकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत नकारात्मक भूमिकाओं से की थी और 1968 में सुनील दत्त की फिल्म मन का मीत में वे विलेन के रूप में सामने आए थे और उनका नाम ऐसे अभिनेताओं में शुमार किया जाता है जिन्होंने अपनी शुरूआत तो विलेन के किरदार से की थी लेकिन बाद में बहुत ही हैंडसम हीरो के रूप में सामने आए थे और जो फिल्में उन्होंने की उनमें और पश्चिम, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, मस्ताना, मेरा गांव मेरा देश, ऐलान मेरे अपने, दयावान कुर्बानी और मेरा गांव मेरा देश जैसी तमाम फिल्में हैं जिसमें उनकी यादगार भूमिकाओं के लिए उन्हें याद किया जाता है।
हम तुम्हें चाहते हैं मरने वाला कोई मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें चाहते हैं रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो पल में ऐसे लगे पल में ऐसे लगे जिस्म से जान जैसे।
He was one of the highest paid stars of his times along with Amitabh Bachchan and Rajesh Khanna. In fact, he was the only superstar who could compete with Amitabh Bachchan's box office run in late 70s to early 80s before taking a break from films. In fact, he was at the pinnacle of his success when he took a break from his career to follow his spiritual guru Osho.
जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा
श्रोताओं आज जयंती है मनी भाई देसाई की। वे उस पीढ़ी के व्यक्ति थे जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी के साथ सक्रिय होकर काम किया और उसके बाद आजाद भारत में भी उन्होंने प्रतिबद्धता पूर्वक काम करने का लंबा अवसर प्राप्त किया। उन्होंने जो भी कार्य किए उसके लिए उन्हें 1982 में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
Today we are also remembering Zuhra Sehgal on her birth anniversary, an Indian actress, dancer and choreographer. She began her career as a member of a contemporary dance troupe and transitioned into acting roles beginning in the 40s. She appeared in several British films as well, television shows and some Indian films of course, in a career that spanned over 8 decades.
So aaiye apne shrotaon ko unki awaaz mein kuch sunwate hain.
मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरी महबूब नमा मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात तेरा हम है तो हमें दर का झगड़ा क्या तेरी सूरत से है आलम में शमानो सार तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए और भी दुख है समाने में महा
और श्रोताओं को बता दें कि उन्होंने भाभी ऑन द बीच दिल से ख्वाहिश हम दिल दे चुके सनम बैंडिट लाइक बेकम साया चिकन टिक्का मसाला मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस वीर जारा और चीनी कम जैसी फिल्मों में काम किया था उन्हें पद्मश्री पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है।
Today is also Murugan Dasa's birthday, and we all know that he is the director of many films, including remakes of successful films like Gajni. Let's listen to a song. And now, listeners, it's time to call a wrap. Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi News Bulletin, followed by Morning News in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in. Have a great weekend ahead.
Namaskar. Namaskar.